1952 की बात है, जगाधरी का सम्मेलन चल रहा था। ये जगाधरी का तीसरा सम्मेलन था पाकिस्तान बनने के बाद। तो महाराज जी के कई शिष्य पाकिस्तान से ही आए थे उनके साथ, उनके आगे पीछे। तो उनके अंदर जो भक्ति भावना थी, इस पार्टीशन की बेचैनी के कारण, से दुख दर्द के कारण, स्वाभाविक है कि उनके मन की क्या हालत रही होगी। तो एक प्रेमी निराश होकर महाजी से प्रश्न कर रहा था। उन्होंने कहा, महाराज जी, जीवन सारा खत्म हो रहा है, भगवान के चरणों का प्रेम नहीं मिला। महाराज जी, जीवन सारा खत्म हो रहा है, भगवान के चरणों का प्रेम नहीं मिला। कोई आसान सा रास्ता बतलाइए जिससे जल्दी कामयाबी मिले। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, राजी व रजा रहने से आसान कोई रास्ता प्रभु प्रेम का नहीं है। प्रेमी, राजी बा रजा रहने से आसान कोई रास्ता प्रभु प्रेम का नहीं। इसलिए हर समय उसके हुक्म को मानना चाहिए, उसकी आज्ञा में प्रसन्न रहना चाहिए। तेरा भाना मीठा लागे, जो वर्तावे सो सुख कर धार। प्रेमियों, यह ही बड़ा आसान रास्ता है और जल्दी कामयाबी देने वाला है। तो सत्पुरुषों की एक ही बात है, वो क्या कि मनुष्य इस प्रकार से जीवन जिए कि उसके जीवन में सुख और दुख के प्रति जो डिफरेंस है, सुख में हम बड़े सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। और इसी कारण, क्योंकि सुख आते जाते रहते हैं, हर दिन यही प्रक्रिया चलती है, तो वो बेचैनी जागने से लेकर सोने तक हमारे मन के अंदर बनी ही रहती है। तो दूसरी ओर, जब प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु भक्ति देह के अंदर होती है, क्योंकि जहां प्रभु हैं वहीं तो मिलेंगे। जिस प्रकार मुझको पता है मन मेरा अंदर है और मन की कल्पना मुझको बाहर ले जाती है, क्योंकि जितना भी मेरा अनुभव है वो बाहरी संसार के सुख और दुख का है। इसलिए हर सोच, हर संकल्प मेरे मन को बाहर ले जाता है। क्यों बाहर ले जाता है? क्योंकि मन के संकल्प की जो पूर्ति है, या जिसको हम इच्छा की पूर्ति कहते हैं या जरूरत की पूर्ति कहते हैं, वो हमारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती है। और कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया ये शरीर में स्थित है। तो इसीलिए शरीर के द्वारा मैं प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, और उस मन के अंदर जो दुख का सुख का संकल्प है उसके अनुसार क्रिया करके मैं दुखी या सुखी होता हूं। तो सारी जीवन की जो दौड़ है वो मन की दौड़ बाहर की तरफ है, और उसका जो प्रयास है वो भी बाहर की तरफ है, जबकि शांति अंदर की चीज है, ईश्वर अंतर्यामी है। तो इसलिए महाराज जी एक ही रास्ता बता रहे हैं कि प्रेमी, राजी व रजा रहने से आसान कोई रास्ता प्रभु प्रेम का नहीं है। इसलिए हर समय उसके हुक्म को मानना चाहिए, उसकी आज्ञा में प्रसन्न रहना चाहिए। तेरा भाना मीठा लगे, जो वर्तावे सो सुख कर धार। प्रेमियों, यही बड़ा आसान रास्ता है और जल्दी कामयाबी देने वाला है। तो सत्पुरुष कुछ दूसरी बात कहते हैं, हमने जो जीवन जीने का तरीका बना रखा है और जो सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है वो बिल्कुल उससे अलग है। तो इसीलिए वो ईश्वर के हुक्म में जीने की बात करते हैं। तो ईश्वर के हुक्म में जीने का क्या मतलब हुआ कि आपका पूरा का पूरा जीवन, जन्म के से लेकर मृत्यु तक का जीवन प्रारब्ध के अधीन है, जो आपके ही पास्ट कर्मों का फल है। आप कहेंगे एक साल का बालक है, उसको दुख मिल रहा है, लोग लगा हुआ है, अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया। तो जो अध्यात्म विद्या है वो आपको शरीर करके नहीं देखती, या जो अवतार हैं वो आपको शरीर करके नहीं देखते, वो आपको दुखी जीव करके देखते। तो देह मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा सुख दुख प्राप्ति का साधन है वो, तो इसलिए मैं देह का उपयोग करता हूं अपने मन के कल्पना को पूर्ण करने के लिए, या मन के अंदर जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए। लेकिन कंफ्यूज क्या हो जाता हूं मैं कि मैं देह हूं और देह करके ही सारी मेरी सोच बनी रहती, मैं देह का मालिक हूं, यहां मेरी बुद्धि पहुंचती ही नहीं, क्योंकि संसार में यह बात कोई सिखाता ही नहीं। केवल गुरु मेरी बात करता है, गुरु देह की बात नहीं करता, वो मेरी बात करता है, जो उसको पता है। क्योंकि इस जन्म में मान लिया आपने कुछ कर्म किए, किसी से छुप के पाप कर्म कर लिए आपने, तो क्या होगा फिर? आप तो कहोगे किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, चलो मुझे सुख मिल गया, पाप कर लिया तो क्या बात। तो आप सुख की प्राप्ति के बंधन में आकर आप पाप कर जाते हैं। लेकिन पाप का मतलब क्या होता है? वो कर्म जिसकी शास्त्र परमिशन नहीं देते, या जिसके पास भी सद्बुद्धि है उसकी बुद्धि का निर्णय है ये कि शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते, ये गलत कर्म है, मुझको नहीं करना चाहिए। अब पाप हो गया वो। अब पाप का मतलब होता है कि आपके उस कर्म के द्वारा किसी ना किसी को दुख पहुंचा है, तो क्या ये माफ हो गया? तो ये देह आपकी प्राप्ति अधीन है, लेकिन अगली देह भी तो मिलेगी आपको, क्योंकि मेरी तो डेथ ही नहीं हुई। जहां मेरी मृत्यु है ही नहीं, और देह समझने के कारण मैं समझता हूं मैं मर जाऊंगा, किसने पूछा, किसने देखा? तो इसीलिए आपका जन्म होते ही पूर्व कर्मों का फल के रूप में जो भोगना है आपने, वो प्रारंभ, जिसको प्रारंभ कहते हैं, जिन परिस्थितियों से देह ने गुजरना है, वो सारी परिस्थितियां देह के सामने आएंगी, उससे गुजरेगा, और उसका जो सुख दुख का भोग है वो कौन करेगा? इस देह के अंदर रहने वाला जीव करेगा, जिसकी ये देह है। हम क्या समझते हैं? हमारा जन्म यहीं से शुरू हुआ है और किसने देखा, हम मर जाएंगे। तो इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर अध्यात्म विद्या नहीं सीखना, इससे बड़ी लापरवाही मनुष्य की नहीं हो सकती। लेकिन वही बात है, जो बुद्धिमान कोई कोई होता है, पूर्ण गुरु का आसरा किसी किसी को मिलता है, लेकिन मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से ये भाव होता है, क्या सही है क्या गलत है, हर मनुष्य के अंदर ये भाव होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको पता होता है कि क्यों? क्योंकि आप भले गलती कर लो या ना करो, आप दूसरे को गलती करते हुए देखकर तुरंत कह देते हो ये बात ठीक नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र पढ़ के ये बात नहीं कहते आप, स्वाभाविक आपके अंदर वो भाव है क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इतनी बुद्धि मनुष्य के अंदर नेचुरल वे में ईश्वर ने दे रखी है। इसी को कहते हैं कि तीन वेद तो हमारे अंदर प्रकट है, वो एक अलग विज्ञान है। तो ये बेसिक नॉलेज जो है बिना किताब पढ़े हुए भी आपके अंदर होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए जो कुछ ही मैंने वर्तमान जन्म में वासना के वशीभूत होकर, इच्छाओं के वशीभूत होकर मैंने गलत कर्म कर लिए, उसका फल तो मैं भोगूंगा। अब वर्तमान जन्म का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार तो मेरे जीवन में सुख आएंगे दुख आएंगे, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। तो जो मैंने गलत कर्म कर लिए उसका फल कब होगा मैं? तो इसीलिए जब इस देह की मृत्यु होगी मुझको नई देह प्रदान की जाएगी, उसमें वो सारा कर्म फल मुझको भोगना ही होगा जो इस जन्म में मैंने तैयार किया, जिसको हम प्रारंभ करके गए थे। इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर यदि किसी के अंदर ईश्वर विश्वास नहीं है और जो अंतर्यामी ईश्वर के लिए जीता नहीं है वो क्या करता है, फिर मन की वासना पूर्ण करने के लिए या मन के संकल्प को पूर्ण करने के लिए या मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो संसार में जीवन व्यतीत करता है, और उन कर्मों के द्वारा फिर उसके पाप कर्म होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको फिर सुख मिलता है आगे और दुख मिलता है। तो ये प्रक्रिया आपकी कभी बंद नहीं होती है, आप हर जन्म ऐसे ही जीते रहते। तो मनुष्य जन्म इस सुख और दुख के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है, और सुख दुख जब मेरे मन को बेचैन नहीं करते या मुझको बेचैन नहीं करते तो उसके लिए एक तीसरा शब्द प्रयोग होता है, प्रसन्नता। तो आपके अंदर प्रसन्नता आती है, जो जैसे सुख का एक शब्द की रचना हुई है, दुख के शब्द की रचना हुई है, ऐसी प्रसन्नता की रचना भी तो हुई है। तो मैं उससे अनभिज्ञ हूं, उसका पता ही मुझे कुछ नहीं कि प्रसन्नता भी कोई चीज होती है। मैं सुख को ही प्रसन्नता कह दिया, उसी का नाम शांति भी है। तो वो मुझको कब मिलती है, जब सुख दुख में मैं सम रहने लगता हूं, अर्थात सुख मुझको सुखी नहीं करता, दुख मुझको दुखी नहीं करता। ये वो हालत है। तो ये कैसे आती है, बात वही है कि ये जिस प्रकार ये जीव मन की इच्छाएं पूर्ण करता है और जीवन जीता है, उसी प्रकार ये जीव गुरु के या शास्त्र के मार्गदर्शन को सीखता है कि सुख दुख से मुक्त होकर मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूं, क्योंकि प्रसन्नता आपकी ये द्वंद्व रूप नहीं है। तो ईश्वर भक्ति से ही आती है और ये अंदर ही आती है। इसीलिए जो सत्पुरुष होते हैं या ईश्वर के भक्त होते हैं, आप देखते होंगे उनके चेहरे पर या उनके जीवन में एक शांति जैसी होती है, वो आपको बेचैन नजर नहीं आएगी। जैसे आम व्यक्ति बेचैन नजर आता है, उनके अंदर बड़ी सहनशीलता होती है। इसीलिए गीता मार्गदर्शन कर रही है कि यम ही ना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। कहते हैं भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्थात हे अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। इंद्रिय और विषयों के संयोग, इसी के द्वारा हमको सुख दुख मिलता है। अब जैसे मान लिया, आप देखिए कान से जो बात सुनते हैं, जो राग सुनते हैं, मान लिया आपको, तो राग सेम है, एक को अच्छा लगेगा एक को बुरा लगेगा। उस राग को सुनकर एक खुश होगा एक दुखी होगा, ये क्यों लगा दिया इसने, क्यों सुना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों का जो अनुभव है उसमें तो भिन्नता होती है। वही चीज एक को दुखी सुख प्रदान कर, मतलब एक को खुशी प्रदान करती है, एक को बेचैनी प्रदान करती है। लेकिन जो सुख दुख है वो समान होता है। जैसे कि किसी को मिठाई पसंद है बच्चे को, किसी को नमकीन पसंद है, वो नमकीन खा के सुखी हो रहा है, दूसरा मीठा खा के सुखी हो रहा है। तो सुख और दुख जो है वो आपको जो चीज पसंद है नापसंद है उसका जो इफेक्ट है वो आपके अंदर सुख या दुख के रूप में आता है, वो सबके अंदर एक जैसा होगा। और बाकी जो है जो हम रस लेते हैं उसमें भिन्नता होती है। सेम वस्तु है, एक को सुख एक को अच्छी लगती है दूसरे को बुरी लगती है। तो अच्छा लगना बुरा होना लगना ये अलग बात है और सुख दुख ये अलग बात है। तो इसीलिए शास्त्र में कह रहे हैं कि सुख दुख की बात करता है। वो कह रहे हैं कि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को वो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। अब मोक्ष कहां मिलता है, आपको पता है ईश्वर अनुभव से मोक्ष मिलता है। और ईश्वर है कहां है, ईश्वर देह के अंदर है। और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिमरन। और सिमरन में सफलता के लिए ही सारा बाहर का मार्गदर्शन है। महाजी सादगी जीवन की बात कर रहे हैं, सादगी का क्या मतलब हुआ? कि संसार के भोगों का, संसार की वस्तुओं का जितना कम से कम मैं उपभोग करूंगा, उतना ही मैं सुख दुख के बंधन से जल्दी मुक्त हो सकता। वो चीजें मुझको कम बेचैन करेंगी दूसरों के मुकाबले। लेकिन जब सिमरन करते हैं तो क्या होता है कि वही संसार याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि किसी स्थिति से हमको सुख मिलता है, किसी स्थिति से हमको दुख मिलता है, और उसके संस्कार हमारे मन में बने रहते हैं, और उसमें से हम एक पसंद करते हैं, एक नापसंद करते हैं। तो मन आपने ईश्वर सिमरन में लगाना है, मंत्र में लगाना है, लेकिन मन के अंदर संकल्प उठे हैं संसार के, तो ये मन बाहर चला जाता है। तो सिमरन में सफलता हम चाहते हैं, लेकिन सुख दुख के विज्ञान को हम ठीक नहीं समझते। तो इसलिए महाजी कह रहे हैं कि प्रेमी, सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। अब संत रविदास महाजी लिख रहे हैं कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। तो इसका मतलब हो गया, सुख भी उतना ही बुरा है, यही कहिए, सुख और या जो सुख है वो भी उतना ही बुरा है जितना कि दुख बुरा है। तो दुख तो हम जानते हैं बुरा है, वो सुख बुरा ही है हम नहीं जानते। तो मन की जो चंचल हालत है वो इसलिए कि हर वस्तु जो संसार में आप उपभोग करते हो, जिसका यूज करते हो, उसके द्वारा या आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है। जब हर चीज द्वंद रूप हो गई तो मन आपका अंदर कैसे टिक सकता है? विचार करके देखो, आप कुछ भी संसार में क्यों ना कर लो, जब तक इस विज्ञान पर ध्यान नहीं दोगे तब तक जो है आप इसको सीखने की कोशिश नहीं करोगे। तो यहां वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को, जो सुख दुख को समान समझता है उसको कहते हैं धीर पुरुष। धीर का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? कि जो सुख दुख को समान समझता है, अर्थात समान ना भी समझे लेकिन सुख और दुख में बहुत बड़ा गैप होता है ना, बच्चा होता है जैसे, कि जरा सी चीज को सुखी कर देती है और तुरंत ही जरा सी चीज उसको दुखी कर देती है। दो मिनट में रोने लगेगा, दो मिनट में हंसने लगेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, केवल सुख दुख जानता है। और यही पशु पक्षी करते हैं। इसीलिए पशु पक्षी या बालक एक ही श्रेणी के, पशु पक्षी के पास ही बुद्धि नहीं है, बालक के पास ही बुद्धि नहीं है। लेकिन जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता हूं तब मुझको कहा जाता है कि तुम किसी गुरु का संग करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, सत्संग का श्रवण करो, तो क्या मिलेगा मुद्रा? मुझको जीने का वो तरीका मिलेगा जो मुझको सुख दुख में जितना मेरा मन विचलित होता था वो धीरे धीरे उसका विचलित होना कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप अध्यात्म मार्ग में बढ़ेंगे आपके अंदर जो सुख दुख का डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। इसलिए देखते होंगे जो आध्यात्मिक लोग हैं वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, उनके स्वभाव में एक प्रसन्नता होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। इसलिए कभी आप उनके पास बैठिए, उनसे बातचीत करिए, एक संसारी व्यक्ति के पास बैठिए बातचीत करिए, डिफरेंस आपको साफ पता लगे। तो किस चीज की प्रसन्नता है? कि उनका आंतरिक जीवन है, इंटरनल लाइफ है। इंटरनल लाइफ कौन सी होती है? हमारी इंटरनल लाइफ मन पर आधारित होती है, उनकी इंटरनल लाइफ जो है वो ईश्वर पर आधारित होती है। वो ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के विज्ञान को मन में दोहराते रहते हैं, या वो विचार, उनके सद्विचार उनके मन में चलता रहता है। तो हमारे अंदर बुद्धि है और उनके अंदर सतबुद्धि, ये अंतर है। तो जिसके अंदर सतबुद्धि है अर्थात ईश्वर विश्वासी बुद्धि है, वो लोग संसार में सुख प्राप्ति के लिए गहरा प्रयत्न नहीं करते। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जिस चीज की जरूरत है वो होनी चाहिए, उतना ही उसके बारे में सोचते हैं, बाकी प्रारंभवश जो भी आ जाए, जो भी छूट जाए उनसे, उस पर वो ध्यान नहीं देते, उसके लिए वो नहीं जीते। इसलिए उनका संयम वाला जीवन होता है, इंद्रियों पर संयम वाला जीवन उनका होता है और सुख दुख उनको ज्यादा विचलित नहीं करते, सहन शक्ति उनके अंदर ज्यादा होती है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्य होता है। अब मोक्ष स्थिति है, ये बुद्धि की एक सम स्थिति है जिसको हम मोक्ष कहते हैं। अब महाराज जी के पेट में कितनी तकलीफ थी, महाराज जी के कान में कितनी तकलीफ थी, लेकिन जब वक्त होता था तो जिस स्थान पर भी वो ठहरते थे वहां से बाहर किसी वृक्ष के नीचे या खुले आसमान के नीचे वो समाधि में बैठ जाते थे। और समाधि क्या है? बुद्धि का सम हालत में स्थित हो जाना। और सम कहते हैं कि एक ईश्वर ही केवल सम है, बाकी हर चीज विषम है प्रकृति के अंदर। तो ईश्वर के साथ वो बुद्धि अंदर एक हो जाती है जिसको समाधि कहते हैं। तो सुख दुख से ऊपर की वो अवस्था है, वो मेरी ही अवस्था है, मेरे अंदर की ही अवस्था है। तो अब बताइए, बुद्धि जब मन से ऊपर चली गई तो वो ईश्वर के साथ एक हो गई, जहां समता है। और संसार की सोच में और संसार के व्यवहार में यह विषमता है, यहां सुख दुख है, यह विषमता है। और प्रसन्नता किसका नाम है या शांति इसका नाम है, वो समता का नाम है। तो चाहिए मुझको समता, चाहिए मुझको शांति, चाहिए मुझको प्रसन्नता, लेकिन सारा जीवन में सुख दुख प्राप्ति के लिए या दुख को दूर करने के लिए, सुख बढ़ाने के लिए यह मैं जीता रहता हूं, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है, जीने का तरीका है। तो इसीलिए मैं सिमरन में कभी भी सफल नहीं हूं, क्योंकि मैंने विज्ञान को तो सीखा नहीं, सिमरन किए जा रहा हूं। तो महाराज जी ने शास्त्र इसलिए लिखा संत अरदास कि यहां से कोई तो उसको ध्यान से पढ़ेगा। जब वो उद्देश्य लिख रहे हैं कि सुख दुख में सम अर्थात समान रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है, तो ईश्वर की उपासना का उद्देश्य क्या हुआ कि सुख दुख मेरे लिए इक्वल हो जाए, सुख प्राप्ति में मेरा मन उछले नहीं और दुख प्राप्ति में मेरा मन डूबे। तो इसीलिए व्यवहारिक रूप में महाराज जी स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, साधकी से, अर्थात ज्यादा सुख के लिए नहीं जीना, ज्यादा सुख के साधन इकट्ठे नहीं करना, तो आप ज्यादा दुखी भी नहीं होगे। जिसके जीवन में सरलता है, सिंपल सी लाइफ है, उसके पास सामान भी कम होगा, ज्यादा कीमती भी नहीं रखेगा, क्योंकि कीमती सामान जब खराब होता है तो दुख होता है ना ज्यादा, तो बड़े दुख बड़े सुख उसके जीवन में नहीं आते जाते। तो उसकी ये अवस्था ऐसी होती है लगभग समता वाली। क्यों ऐसा करता है वो? क्योंकि उसने अंदर जाना है, और बाहर यदि माया इकट्ठी करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा भोगने में, तो उसके संस्कार तो मन में बन जाएंगे, उसके संकल्प उठेंगे, वो संकल्प उसको बेचैन करेंगे, तो फिर बाहर कोशिश करेगा। तो इसीलिए जिसने ईश्वर के इस विज्ञान को सीखा, गुरु की इस बात को सीखा, शास्त्र की इस बात को सीखा कि मनुष्य जन्म की सफलता सुख दुख में सम रहने की खातिर है, अर्थात सुख और दुख का जो डिफरेंस है हमारे जीवन में वो धीरे धीरे उसके अंदर कम होता चला जाता है, जिस अनुपात में सुख दुख कम होता है उसी अनुपात में शांति बढ़ती जाती है। इसीलिए शांति कैसे बढ़ती है कि मन आपका जो है ईश्वर के सिमरन में टिकने लगता है, लुकने लगता है, और ईश्वर की कृपा का आपके अंदर अनुभव होने लगता है आपको। तो इसीलिए जब वो अनुभव प्रकट होता है तो फिर मन को एक नया आधार मिल गया, जिसको महाजी नाद करके कहते थे या कुंडली करके या निरत करके कहते थे। जब उस सिमरन के द्वारा उसका अनुभव अंदर होता है, तब इस जीव को या इस बुद्धि को एक नया आसरा मिल जाता है कि वास्तव में प्रभु हैं और मेरे अनुभव में। तो जो आनंद जो मस्ती महाजी की समाधि में होती थी उसके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि एक दिन मुझको भी वो मिलेगी। और बीच में देह की मृत्यु हो भी गई तो शास्त्र वायदा कर रहे हैं कि जो स्थिति तुझको मिल गई, जो कमाई अंदर की तुमने कर ली, वो अगले जन्म में सुरक्षित उसी प्रकार तुमको मिल जाएगी। जिस प्रकार महाराज जी खुद कह रहे हैं, प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है, संसार क्या है। लेकिन संसार में इन्होंने संसारियों की तरह ही चलना उचित समझा, बचपन से समाधि लगाए नहीं बैठे रहे। हालांकि रात्रि उनकी ईश्वर की याद में ही बीतती थी, लेकिन दिन में तो स्कूल भी जाते थे, जो काम होते होंगे घर के वो भी करते थे, एक साधारण जीवन था उनका अन्य बालकों की तरह से। तो ये जो कमाई है ये आपकी निरर्थक नहीं आती। क्यों नहीं निरर्थक जाती? क्योंकि आप देह नहीं हो, आपके अंदर ये वहम है कि मैं देह। तो इसीलिए इस विज्ञान के अनुसार या इस ज्ञान के अनुसार मुझको सोचना चाहिए। और मानव जन्म ईश्वर ने जब दिया है तो मानव जन्म में ही वो प्रभु अवतार लेकर आते हैं, गुरु रूप में आते हैं, बार बार वही बात हमको सिखाते हैं, जो बात वेद में है वही गीता में है, वही सत्ता विलास में। एक बार महाराज जी से पूछा, किसी प्रेमी ने कहा कि महाराज जी इतने शास्त्र संसार में मौजूद हैं या भारत में मौजूद हैं, आपने एक और रचना कर दी। तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी इन्होंने गीता लिखी है, गीता पढ़ने में कठिन है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन समता विलास हिंदी में है। अब यही बात देखो गीता के श्लोक में है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षवा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। और यही बात महाराज जी ने एक लाइन में लिख दी कि सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी। तो जो बुद्धि सुख दुख में सम रहने का महत्व समझती है उसको बुद्धि नहीं कहते, उसको सतबुद्धि कहते हैं, अर्थात सही बुद्धि है वो जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखें कि मनुष्य जन्म की सफलता इसमें है कि सुख दुख मेरे जीवन, इसका जो डिफरेंस है ये मेरे जीवन में कम होता रहे, अर्थात सुख में मैं ज्यादा सुख महसूस ना करूं, दुख में ज्यादा दुख महसूस ना करूं। ये कब होगा? जब आपका मन अंदर ईश्वर में लगने लगेगा, वो संस्कार आपके अंदर बनने लगेंगे। और यदि आपका सादगी का जीवन नहीं हुआ, अर्थात संसार के सुख कम से कम भोगने की कोशिश करना और सिमरन में वक्त ज्यादा लगाने की कोशिश करना, और बुद्धि के अंदर जो संसारी विचार चलते हैं उसके मुकाबले में ये सदविचार मेरी बुद्धि में चले, तो धीरे धीरे मेरी बुद्धि का निर्णय बदलता है और मन के अंदर जो संस्कार हैं वो प्रभु के संस्कार बनने लगते हैं। और एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आता है कि संसार मुझको बेचैन नहीं करता, अंदर प्रभु की प्रसन्नता बनी रहती है, तब जाकर ये मानव जीवन मेरा सही रूप में व्यतीत होता है। ओम ब्रह्म सत्य सर्व सत्य।